मित्रों, मैं हूं कुमुद मिरानी और आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे। आइए आज चलते हैं भारत के उस शहर में जहां गंगा उल्टी बहती है। आप समझ ही गए होंगे किस शहर की मैं बात कर रही हूं। जी हां, बनारस या काशी। बनारस की कई 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 चीजें मशहूर हैं, लेकिन आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पर इस विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ अनछुए तथ्यों का अनावरण करेंगे जो पिछले 100 वर्षों में सामने नहीं आए हैं। इस कहानी को भेजा है हमारे भारत के संवाददाता शिवनाथ झा ने। वो बताते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 100 साल होने के अवसर पर महाराजा दरभंगा के परिवार से जुड़े एक लेखक ने सभी साक्ष्यों के आधार पर उस जमाने की सभी हकीकतें सामने प्रदान की हैं। अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं द इंसेप्शन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, Who was the founder in the light of historical documents नाम की पुस्तक के लेखक श्री तेजकर झा से। तेजकर झा पटना विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए किए हुए हैं और पिछले कई वर्षों से महाराजा दरभंगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय शैक्षणिक जगत में आमूल परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे, दान भी दिए थे, उससे संबंधित सभी दस्तावेज इकट्ठे करके तेजकर झा पिछले कई वर्षों से महाराजा दरभंगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय शैक्षणिक जगत में बहुत परिवर्तन लाने की बहुत मेहनत की थी, कोशिशें की थी और दान भी दिए थे, उससे संबंधित सभी दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या पटना विश्वविद्यालय या कोलकाता विश्वविद्यालय। तो आइए मित्रों, अब मैं आपकी भेंट करवाती हूँ श्री तेजकर झा के साथ, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है द इंसेप्शंस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हु वाज द फाउंडर इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो नमस्कार तेजकर जी।
नमस्कार।
ये बताइए कि आपने ये पुस्तक लिखी है कि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो ये बताइए कि नाम अक्सर आता है पंडित मदन मोहन मालवीय का, लेकिन अन्य लोगों का भी योगदान रहा है इसकी स्थापना में?
जी, हम जब बात करते हैं कोई ऐसी संस्था की जो 20वीं शताब्दी में बनी हो, तो एक नियम और कानून के तहत कोई संस्था बनती है और एक संस्था के बनाने में किसी एक ही व्यक्ति की भूमिका नहीं हो सकती है, उसमें कई लोगों का सहयोग जरूरी होता है। तो इस संदर्भ में देखें तो सिर्फ मदन मोहन मालवीय का नाम लेना थोड़ा, कागजात जब देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो उसके हिसाब से सही नहीं लगता है।
तो आपको प्रेरणा कैसे मिली ये पुस्तक लिखने की तेजकर जी?
असल में करीब पिछले एक दशक से बीएचयू के कुछ स्टूडेंट्स, भूतपूर्व स्टूडेंट्स लगे हुए थे मदन मोहन मालवीय के ऊपर में एक पुस्तक लाने की, और इस पुस्तक में वो लोग चाह रहे थे कि बीएचयू का कुछ डॉक्यूमेंट्स डाला जाए। मैं बिहार पे रिसर्च कर रहा हूँ तो बिहार के संदर्भ में उन लोगों को पता लगा कि दरभंगा के महाराजा ने कुछ सहयोग किया था, तो मुझे अप्रोच करते थे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिला है क्या, किस तरह का सहयोग करते रहे हैं। तो मैं उस समय मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था। फिर उसके बाद रामेश्वर सिंह के ऊपर में एक पुस्तक बन रही थी, दरभंगा में राज परिवार की ही फाउंडेशन है, तो वो लोग बना रहे थे, उसमें मैंने एक दो कागज देखे जो बीएचयू के संदर्भ में थे, तो उसको देखने से ऐसा लगा कि नहीं, इसमें तो बीएचयू में कुछ बात और है जो प्रकाश में नहीं आई है। तो फिर मैंने इसके पीछे इस कागज खोजने शुरू किए और उस संदर्भ में एक किताब मुझे मिली, 1936 ईस्वी में लिखी गई थी, जो बीएचयू बनारस से ही प्रकाशित हुई
जी,
और वी ए सुंदरम नाम के एक व्यक्ति ने, जो बीएचयू के सीनेट के मेंबर भी थे, उन्होंने ही लिखा था, और उस समय वाइस चांसलर मदन मोहन मालवीय थे। तो इस पुस्तक में कई अंतर विरोधी बातें उभर करके आई। साक्ष्य के नाम पर कुछ साक्ष्य दिए नहीं गए थे,
जी
मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जो व्यक्ति जिसको फाउंडर कहा गया है और वो दूसरा ही वाइस चांसलर बनता है, 20 साल वाइस चांसलर रहता है और अपने वाइस चांसलर रहने के क्रम में ही एक पुस्तक लिखवाता है और उस पुस्तक में कोई साक्ष्य नहीं है, तो ये संभव कैसे हो सकता है कि कैसे वो फाउंडर क्यों उसको कहा जाए, क्या क्या उसने की स्थापना उसने अकेले ही कर दिया। एक एक खास चीज मैं ये बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि अगर मदन मोहन मालवीय का 1910 ईस्वी का प्रोफाइल देखा जाए तो इनके पिता एक कीर्तनिया पंडित थे, उनकी कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा ना हो, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा ना हो, एक यूनिवर्सिटी खोल ले, ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
तो आपकी नजर में एनी बेसेंट और दरभंगा के नरेश रामेश्वर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है BHU यूनिवर्सिटी की स्थापना में?
जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट ने ही परिकल्पना की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भारत में। उससे पहले सिर्फ 4 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज भारत में थी जो सरकार के तहत, तो एनी बेसेंट ने सोचा कि एक इंडिया यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसके तहत भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। और इसके लिए उनके पास एक कॉलेज भी था, हिंदू कॉलेज बनारस में, जिसको सेंट्रल कॉलेज मान करके एक यूनिवर्सिटी खड़ी की जा सकती थी। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन 1907 में दे दिया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार को। रामेश्वर सिंह के भी इच्छा थी कि एक यूनिवर्सिटी बने, तो उन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के नाम से एक एप्लीकेशन दिया था, वो भी 1907-8 के आसपास, कि एक यूनिवर्सिटी में चाहता हूँ और बनारस चूंकि समूचे भारत से लोग आते हैं पढ़ने के लिए तो ये यूनिवर्सिटी बनारस में ही हो, लेकिन इसके पढ़ाई की जो यूनिट्स हैं वो पूरे देश में फैले हों। तो इनका एक अलग प्लान था जिसके तहत शिक्षा कम पैसे में हो और एक जैसी शिक्षा पूरे भारत में हो। मोहन मालवीय भी चाहते थे कि एक बने यूनिवर्सिटी।
तो ये बताइए कि ब्रिटिश सरकार उसके लिए, इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई थी?
नहीं, ब्रिटिश सरकार तीनों में से किसी प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी के तहत तो उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कोई बात आती नहीं थी।
और
इनिशियली तो वो रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने तीनों यूनिवर्सिटी की परिकल्पना को।
और नरेश जो रामेश्वर सिंह हैं दरभंगा के, उन्होंने काफी सारी धनराशि भी दी है इसकी स्थापना के लिए?
जी, बाद में जब तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग तीनों अलग अलग नहीं होकर के एक साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि 1911 तक न तो एनी बेसेंट को कुछ हासिल हुआ न मदन मोहन मालवीय को कुछ हासिल हुआ, एक पैसा भी जमा नहीं कर पाए थे। तब तीनों लोग मिले और रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में इस यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी गई, तो इन्होंने सरकार से एक चिट्ठी लिखा, सरकार उस पर एग्री की कि हाँ हम आपको सहयोग करेंगे, और इसके लिए पैरामीटर्स तय हुए कि किस पैरामीटर्स में प्रपोजल बनाया जाए, और वापस आकर के दिसंबर 1911 में एक संस्था का निर्माण होता है, सोसाइटी फॉर हिंदू यूनिवर्सिटी करके, जिसके 58 सदस्य हुए और अध्यक्ष रामेश्वर सिंह हुए, और उन्होंने बैंक अकाउंट खोल करके 3 लाख रुपया तुरंत और 5 लाख रुपया देने की बात कही, और पहला दान यही था, इसी से पैसा आना शुरू हुआ।
अच्छा, तो जमीन किसने दी थी इस यूनिवर्सिटी के लिए?
जी, जब जमीन की बात चली तो रामेश्वर सिंह के पिता और तत्कालीन बनारस के जो राजा थे उनके पिता, इन लोगों ने गंगा में, आकंठ गंगा में खड़े होकर के दोस्ती की कसम खाई थी। तो रामेश्वर सिंह ने उन्हें कहा कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी की परिकल्पना हुई है, आप ये तो आपका जगह है, आप अगर इसमें जमीन दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि आप 3 जमीन सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें से कोई आप ले लीजिए। तो एक कमेटी बनी, कमेटी ने 3 जगह जमीन देखा और उसका प्रस्तावना किया, और अंत में लंका में जमीन, लंका नाम के मोहल्ले में ये जमीन बनारस के राजा ने डोनेट किया।
तो अब इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इस अवसर पर कोई विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ?
जी, विशेष कार्यक्रम तो हो रहे हैं, 100 साल मनाया जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि इसमें बाकी जो जिनकी मुख्य भूमिका एक तरह से कही अध्यक्ष का कोई छोटा भूमिका नहीं होता है, और एनी बेसेंट उपाध्यक्ष थी और उन्होंने अपनी कॉलेज दी यूनिवर्सिटी, बिना उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी खुल नहीं सकती थी, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, वहाँ एक रोड नहीं है, एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये बड़ा दुख की बात है।
आपने इन अनजाने तथ्यों पर प्रकाश डाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपकी पुस्तक और आपकी रिसर्च के साथ।
जी बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी।